ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाट्यं सुगीतं वादित्रं अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। नाट्यं सुगीतं वादित्रं अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। नाट्यं सुगीतं वादित्रं अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। नाटक की कला, सुगीतम मधुर गायन की कला, वादित्रम वाद्य यंत्र बजाने की कला, अंतर्धानम छिपने की कला, च भी खेचराह आकाश मार्ग में यात्रा करने वाले देवताओं ने, ऋषयः ऋषिगणों ने, च भी आशिषः आशीर्वाद, सत्याः अमोघ समुद्रः समुद्र के देवता ने, शंखम शंख आत्मजम अपने में से उत्पन्न। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक संगीत वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद भी दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। अगले दो तीन श्लोक में तात्पर्य नहीं है तो केवल अनुवाद पढ़ेंगे। सिंधवः पर्वतानद्यो रथवीथीर महात्मनः सूतोथ मगधो वंदी तं स्तोतुम् उपतस्थिरे। अनुवाद। समुद्रों पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हांकने के लिए मार्ग प्रदान किया। सूत मागध तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। स्तावकांस्तान विप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघ निर्हद्या वाचा प्रहसन नदमब्रवीत। अनुवाद: जब परम शक्तिशाली वैन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। पृथुर्वाच: बोह सूत हे माघध सौभ्यवंदिम लोके धुनास्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मा मय्य भुवान् वितथा गिरोचः। अनुवाद: राजा पृथु ने कहा, हे भद्र सूत मागद तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा हो, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को भेंट करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: सूत मागध तथा वन्नी जनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के देवी गुणों को बताने वाली थीं, क्योंकि वे श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रतापूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ न जाएं, तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को श्री भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल श्री भगवान के तथा कथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा निरे मूर्ख हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठे हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। राजा पृथु ने चाह कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाएं, जो अपने को श्री भगवान का अवतार बताता हो। अनुवाद को दोहराइए: राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं है, तो फिर आप इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा हो, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को भेंट करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज पृथु ने जब राज गद्दी स्वीकार की, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो ब्रह्मांड के कोने कोने से देवी देवता गण, उच्च लोकों के निवासी गण, ऋषि गण इत्यादि सब वहां आए और महाराज पृथु को अनेक प्रकार के भेंट प्रदान करने लगे। इस श्लोक में बताया है कि गगनचारी देवताओं ने, जो कि आकाश मार्ग से चलते हैं, रात को आप इस आकाश मार्ग को देख सकते हो, रात को आप अगर देखोगे ऊपर आकाश में, खास करके जब कोई बिजली नहीं है ताकि यहाँ के सब बल्ब वगैरह सब बंद हैं और अंधकार हो, आकाश में देखेंगे तो आपको यह आकाश मार्ग दिखाई पड़ेगा। और यह आकाश मार्ग पतला सा है और इसको इसके ऊपर से सब देवतागण भी भ्रमण करते हैं। हालांकि देवतागण कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ऊपर नीचे। अभी एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए मार्ग है आकाश में, जिस तरह से एक शहर में दूसरे शहर में जाने के लिए हाईवे होते हैं, रास्ते होते हैं, उसी तरह से एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए मार्ग होते हैं। लेकिन वहां पे चलने के लिए कोई योग्यता चाहिए। जैसे हाँ, हमारे देश में तो रास्ते में तो सभी लोग चलते हैं, बड़े ट्रक लॉरी भी चलते हैं, रेलगाड़ी, वो अपनी छोटी गाड़ी भी चलती है, साइकिल भी चलते हैं और पैदल जाने वाले भी जाते हैं, सब जाते हैं, इसलिए इतना सब इतने टक्कर वगैरह होते हैं। लेकिन विदेशों में जो हाईवे होते हैं, वहां कोई पैदल नहीं चल सकता, वहां कोई साइकिल वाला नहीं जा सकता, और गाड़ियां भी केवल जो अमुक गति से तेज जा रही हैं वही जा सकते हैं, और लोग नहीं जा सकते। अगर हाईवे पे आपने अमुक गति से कम गाड़ी चलाई तो आपको दंड दिया जाता है, क्योंकि सभी लोग इतना तेज जा रहे हैं, आप धीरे जाएंगे तो फिर वहां टक्कर हो जाएंगे। दूसरे जगह में अमुक गति से ज्यादा जाएंगे तो वहां दंड मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग रास्तों में योग्यता या कोई आवश्यकताएं होती है जिनको पूरा करना पड़ता है। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है, रास्ता पकड़ लिया, मैप नक्शा ले लिया, कहां कैसे जाना है, जाए, नहीं होगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, तो पुण्यकृताम जो पुण्य कार्य करते हैं वही मात्र इन लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, और उन्हीं को पता चलेगा कि यह रास्ता क्या है, क्योंकि उनको ये इस रास्ते से ले लिया जाएगा। जब कोई बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति का देहांत होता है तो उनको इंद्र के, जो कि देवताओं के राजा हैं, उनके दूत आते हैं उनके रथ में और उनको ले जाते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को स्वर्गलोक में ले जाने के लिए इंद्रदेव ने स्वयं अपना रथ भेजा और अपने सारथी को स्वयं भेजा, जिसका नाम था माताली, और कहे कि आइए हम आपको स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। तो स्वर्गलोक में चलने वाले ये घोड़े हैं जो आकाश मार्ग में चल सकते हैं। अभी यहां के घोड़े तो आकाश में नहीं चल सकते, उनको तो जमीन चाहिए, लेकिन ये जो दिव्य घोड़े हैं, स्वर्गलोक के ऊपर के लोक के जो घोड़े होते हैं, वो दिव्य मार्ग में चल सकते हैं और बहुत तेजी से चलते हैं। तो उनकी गति और यहां हमारे घोड़ों की गति तो बहुत, इनमें बहुत अंतर होता है। तो रथ में सवार होकर वो ले जाते हैं उनको। जैसे रामायण में भी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट में थे तो वहां कितने ही सारे ऋषि मुनिगण तपस्या करते थे, और कई ऐसे शरभंग ऋषि इत्यादि जो कि केवल प्रभु रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तो उनको शरीर त्याग कर ऊपर के लोकों की प्राप्ति तो होनी ही थी, वो तो निश्चित था उनकी तपस्या के बल पर। ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक इत्यादि, लेकिन वो रुके हुए थे कि प्रभु का दर्शन लें और फिर हम चले जाएं। वैसे तो देवी देवतागण और इंद्र देव भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे कि आइए, आपके तपस्या के बल पर आपको हमें स्वयं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो तपस्या ज्यादा करते हैं तो उनको ये ऊपर लोकों की प्राप्ति होती है, तपलोक, जनलोक, खास करके उन लोकों में उनको वो दिव्य आनंद आता है जो हमें भोग लेने से भी नहीं आ सकता। तपस्या में भी एक ऐसा आनंद है जो हम समझ नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म आनंद है ये। अभी जो संसार में भोग चल रहा है वो तो बहुत स्थूल भोग है, लेकिन जो ऋषि मुनिगण हिमालय में बैठते हैं, जो वास्तव में तपस्वी हैं, और वो लोग जो बैठकर तपस्या करते हैं, उसमें एक ऐसा दिव्य आनंद है कि उस दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए फिर उनको और आगे ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, जनलोक, तपलोक इत्यादि, वहां भी जाकर तपस्या करते हैं। हम सोचेंगे कि भाई तपस्या करते हैं किसी दूसरे लोक में जाकर भोगने के लिए, लेकिन यहां देखते हैं कि महरलोक, जनलोक में जाकर और तपस्या करते हैं। वास्तव में भोग के लिए केवल स्वर्गलोक है, गंधर्व लोक इत्यादि, लेकिन इससे भी ऊपर के जो लोक हैं, जैसे महरलोक, जनलोक और तपलोक, सत्यलोक, वहां ये सब तप भूमि है, तपस्या के लोक है। तो वहां जीव इतनी तपस्या करते हैं और इतना आनंद प्राप्त करते हैं उस तपस्या में, इसलिए केवल वही लोक अधिकारी हैं उन लोकों में जाने के लिए जो यहां बहुत तपस्या कर चुके हैं। तो इंद्रदेव ये देखते हैं कि कैसे इन ऋषि मुनियों को वहां लिया जाए। तो प्रभु रामचंद्र जी के आंखों के सामने प्रभु रामचंद्र जी देख रहे हैं कि इंद्रदेव आ रहे हैं अपने रथ में और फिर इनकी आत्मा को ले जा, इनके दिव्य शरीर को ले जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म मतलब जैसे ही श्रभंग ऋषि और अन्य ऋषियों ने अपना शरीर त्याग दिया तो तुरंत उनको ऊपर के लोकों का शरीर प्राप्त हुआ। महरलोक, जनलोक इत्यादि में जो शरीर है लोगों का, वो भी भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, लेकिन फिर भी वो शरीर, वो स्थूल शरीर हमारे स्थूल शरीर से बहुत सूक्ष्म है। स्थूल शरीर होते हुए भी वहां सब कुछ बहुत सूक्ष्म है। तो इस तरह से ये प्रकाशमान उज्जवल शरीर जो हुआ, देखा प्रभु रामचंद्र जी ने अपने आंखों के सामने, और इस प्रकाशमान शरीर में फिर वो रथ पर सवार होकर चले गए आकाश मार्ग से। तो ये ऊपर के लोक के जो निवासी हैं, इनमें ये सिद्धियां होती हैं, और खास करके एक लोक है जिसका, जिसको सिद्ध लोक कहते हैं, जहां जन्म से ही सारे जीव, जीवों को सारे योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि देवी देवताओं ने महाराज पृथु को एक ऐसे पादुका भेंट में दिए जिनको पहनकर स्वाभाविक तौर से महाराज पृथु को योग शक्ति प्राप्त हो सकती थी, और वो कहीं भी गगनचारी हो सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, आकाश मार्ग से भ्रमण कर सकते थे केवल वो पादुका पहनने से। लेकिन सिद्धलोक में जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, जन्म से ही उनको ऐसे चीजें हो जाती हैं, मिल जाती हैं। जैसे कि एक पक्षी का बच्चा जो होता है, जन्म से ही वो उड़ना सीख लेता है, जान लेता है, उसके लिए स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य जाति का जो बच्चा है, वो कितना भी अपने हाथों को यूं यूं करे वो उड़ेगा नहीं, कितना भी प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, उड़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से जो सिद्ध लोक और ऊपर के लोकों के निवासी हैं, उनको ये योग शक्तियां स्वाभाविक तौर से उनको प्राप्त होती हैं। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को अनेक भेंट दिए। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड में आना जाना हो रहा है, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे, ऐसे है जो ऊपर के लोक के निवासी यहां भ्रमण करते रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि हमारे कलयुग में सब कुछ बहुत स्थूल हो गया है, हमारी दृष्टि भी बहुत स्थूल हो गई है, और देवताओं के शरीर वगैरह ये बहुत सूक्ष्म है हमारे लिए, हम देख नहीं सकते उनको, और देवताओं के पास वो शक्ति भी है कि हमारे सामने अदृश्य हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये शक्ति महाराज पृथु को भी दी। देखिए यहां बताया गया है, नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्धानम च खेचरा। जो खेचरा है, ये जो खे मतलब आकाश, चरा मतलब चरण करने वाले, तो ये खेचरा जो देवता है उन्होंने कई भेंट दिए। उनमें से दिव्य नाटक संगीत वाद्य तंत्र बजाने की जो कला है वो भी प्रदान की महाराज पृथु को, क्योंकि गंधर्व इत्यादि ये किन्नर इनमें बहुत निपुण होते हैं। अगर संगीत की विद्या क्या है सीखना है ब्रह्मांड में, तो गंधर्वों से सीखना है। और खासकर गंधर्वों में से प्रमुख जैसे तुम्बुरु है, ये बहुत प्रमुख माने जाते हैं। और गंधर्व लोक में से भी नारद मुनि वही क्या है, गंधर्वों में से माने जाते हैं, इसलिए वो भी वाद्य तंत्र बजाते हैं, अपनी वीणा बजाकर नारायण नारायण कहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, हमेशा राधिका रमण अर्थात कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए अपने वीजा पे मधुर संगीत करते हुए गान करते हुए नारद मुनि भ्रमण करते हैं। तो गंधर्व लोक जो है में वहां बहुत अच्छा संगीत करते हैं। तो इसी तरह से ऊपर के लोकों में नाट्य कला, संगीत की कला, वाद्य तंत्र की कला, ये बहुत ही एक बहुत विकसित है वहां। और वहां का संगीत अगर हम सुनेंगे तो हम सब कुछ यहाँ का संगीत भूल जाएंगे, यहाँ का सब फिल्मों के गाने और यहाँ के ये वो सब भूल जाएंगे, इतना मधुर होता है वहां का संगीत। तो ये कला भी सारे देव देवताओं ने पृथु महाराज को प्रदान किए राज्याभिषेक के समय। देखिए महाराज पृथु के पास कितनी सारे कलाएं आ गई, सारे ब्रह्मांड भर की कलाएं शक्तियां आ गई उनके पास। वास्तव में तो वो भगवान के अवतार है, शक्तिविश अवतार है, लेकिन फिर भी निमित्त बने सारे देवी देवतागण और उनके आके सारे कलाएं दे दी। इस तरह से अलग अलग कलाएं दी, अंतर्धान होने की कला प्रदान की, अदृश्य होना फिर से दृश्य होना ये कला भी दी, क्योंकि देवताओं के अंदर है इसलिए तो वो दे सके। अगर हमारे अंदर हमारे पास कुछ है नहीं तो उस चीज को हम कैसे दे सकते हैं दूसरों को। तो देवतागण अदृश्य हो सकते हैं और देखते हैं कि कलयुग में पृथ्वी लोक के लोग बहुत अयोग्य हैं, बड़े पापी हैं, इसलिए हमारा दर्शन करने के लिए योग्य नहीं है वो, इसलिए वो जब भी आते हैं देवी देवतागण तो अदृश्य होकर आते हैं। अभी भी देवतागण आ रहे हैं पृथ्वी लोक पर, आते हैं जाते हैं, कभी कभार ऊपर के लोक के निवासी यहां भी जाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है UFO, आप जानते हैं क्या है UFO? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, UFO मतलब ऐसे कोई चीज आकाश में देखते हैं विमान की तरह, जो विमान नहीं है, अपना कम से कम विमान नहीं है, कोई बादल नहीं है, क्या है वो चीज उड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो इतिहास में देखी गई हैं, लोगों ने देखे हैं और इनके ऊपर कई सिनेमा भी बनते हैं और इसके रिकॉर्ड भी किए गए हैं। तो कभी कभार जो है ऊपर के लोक निवासी आते हैं, थोड़ा झलक अपना भी दे देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो अदृश्य रहते हैं। और आते भी हैं, कोई शरीर धारण भी करते हैं तो वेश बदल कर आते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनका दर्शन लेने के लिए सारे देवी देवताओं ने भक्तों का रूप धारण किया और ऐसे लगा किसी कोई पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय उनके घर में नवद्वीप में अचानक कहां कहां से बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां महिलाएं आने लगी और सुंदर बहुत पुरुष भी आने लगे सब वहां, और ऐसे बहुत सुसंस्कृत लग रहे थे, बहुत ही सभ्य लग रहे थे। उनके जाने पहचाने लोग भी तो थे ही पड़ोस के, लेकिन साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग आ रहे थे और इनको पहचान नहीं रहे थे, ये लोग कौन हैं। सोचा उन्होंने कि हाँ होंगे पड़ोस के, इधर थोड़े गांव के लोग होंगे जो आए हैं, अभी सबने खबर सुनी होगी कि जगन्नाथ मिश्र और सची देवी को पुत्र हुआ है बहुत सालों के बाद में, तो दर्शन करने आए हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में ये सब देवी देवता गण थे, मनुष्य शरीर धारण किया था उन्होंने, स्थूल शरीर वेश बदल के आए थे, केवल प्रभु का दर्शन करने के लिए आए थे। जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे और माता देवती देवकी के गर्भ में थे, उस समय भी सारे देवी देवता गण आए थे, साक्षात अपने रूप में ही आए थे, वेश बदल कर नहीं आए थे, क्योंकि देवकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नहीं वसुदेव। देवकी और वसुदेव तो साक्षात भगवान के माता पिता बने। अगर कोई व्यक्ति इस योग्य है कि वो माता पिता बन सकते हैं भगवान के, तो क्या वो देवताओं का दर्शन करने के लिए योग्य नहीं हो सकते? जब साक्षात भगवान उनके सामने आएंगे उनके पुत्र के रूप में, उनको दर्शन देंगे, उनको प्रेम देंगे, तो देवी देवताओं को तो आना ही था उनके सामने। तो देवी देवतागण भी आए, प्रकट हुए और माता देवती को, देवकी को शांत किया उन्होंने कि आप चिंता मत कीजिए, आप भयभीत हैं कि कंस आके आपके बच्चे को खत्म करेगा, लेकिन ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, श्री कृष्ण हैं, स्वयं नारायण है, ये हमारे आराध्य देव हैं ये, और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भयभीत मत होइए। तो उस समय देवकी और वसुदेव ने इन सारे देवी देवताओं को देखा जो उनके जेल खाने में, कैद खाने में आए थे, सब वहां अंदर आए थे। उनको कोई जेल की सीमा नहीं है, उनके लिए वो इस पत्थर के माध्यम से भीतर भी आ सकते हैं, उनका शरीर इतना सूक्ष्म होता है, सारे योग्य सिद्धियां उनके पास है, छोटे से छोटा कर अपने आ सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से आजकल हमारे सामने प्रकट इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम पापी हैं, हम योग्य हैं, अयोग्य हैं। तो खैर उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो महाराज पृथु के सामने आए और अलग अलग प्रकार के उपहार वगैरह सब देने लगे। और आगे चलकर यह बताया जा रहा है इन श्लोकों में कि समुद्रों, पर्वतों और नदियों ने भी उन्हें अवरोध के बिना रथ हांकने के लिए मार्ग प्रदान किया। समुद्र के देवता ने कहा, वरुण देव ने, कि आपका रथ चलाना चाहते हो तो मैं मेरे पानी को अलग कर दूंगा, आप चलो, कोई बात नहीं। नदियों की देवताओं, देवियों ने भी कहा कि यहां आपको कोई रुकावट नहीं होगी, आप हमारे जल से आपका रथ ले जा सकते हैं। पर्वतों ने भी यही कहा कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह सब जगह से हरी बत्ती उनको हुई, ग्रीन सिग्नल, कहीं उनको लाल बत्ती दिखाई नहीं पड़ी कि आपको हम रोकेंगे नहीं, जहां चाहें आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। क्योंकि वो भी जानते थे कि ये भगवान की शक्त्यावेश अवतार हैं और भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। जो भी भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं वो भगवान के विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए, कोई कह सकते हैं नरसिंह देव प्रकट क्यों हुए? एक कारण बताइए, सबसे महत्वपूर्ण, अपने भक्त का रक्षण करने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए, या हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए? किसके लिए आए थे? हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आए थे कि प्रहलाद का संरक्षण करने आए थे? प्रहलाद का संरक्षण करने आए थे, क्योंकि प्रहलाद के संरक्षण के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना था, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रहलाद को बचाने के लिए। अगर हिरण्यकश्यप को मारना होता तो आसान था, माया शक्ति के द्वारा भी उनको मार सकते थे। तो इस तरह से हर एक अवतार के कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं प्रत्येक अवतार के लिए। तो उसी तरह से पृथु महाराज, जैसे परसों चर्चा कर रहे थे, पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है और भगवान ने उनको कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की है? प्रजा पालन, प्रजा का कैसे देखभाल करना चाहिए, ये विशेष बात उनको बताई थी। तो इस तरह से जब सारे देवी देवतागण और जो अधिकारी व्यक्ति हैं समुद्रों, पर्वतों, नदियों के लिए इत्यादि, उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान के प्रजा पालन शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं और इनको बहुत सारे कार्य करने हैं, अभी प्रजा के भलाई के लिए ये कार्य करेंगे, प्रामाणिक राजा होंगे ये, इसलिए हमारा सहयोग होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, सारी सुविधाएं उनको प्रदान कर दी। इस तरह से उन्होंने समझा कि वास्तव में पृथु महाराज कौन हैं और किस लिए आए हैं। और आगे यहां भी बताया जाता है कि सूत, मागत तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की, वे सभी उनके समक्ष अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। देखिए, अलग अलग प्रकार के जातियां होती थी, पहले के समय वर्णाश्रम धर्म में क्या होता था कि जो पिता करता था प्राय हमेशा पुत्र भी वही करता था, कभी कभी थोड़ा फर्क पड़ जाता था। जैसे कि महाराज ऋषभदेव, उनके कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र। महाराज ऋषभदेव वो भी शक्तिविश अवतार थे, लेकिन फिर भी राजा थे, इसलिए क्षत्रिय कहलाते हैं। तो वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन क्या उनके सारे 100 पुत्र क्षत्रिय बने? कोई जानते हैं क्या विभाजन था उनके पुत्रों का? सबसे वरिष्ठ कौन थे? भरत महाराज। वो तो सारे पृथ्वी के राजा थे, तो वो तो क्षत्रिय थे। फिर बाकी 9, उनके बाद में जो 9 आए पुत्र, वो कौन बने? नव योगेंद्र, जो परमहंस थे। मतलब न शूद्र, न क्षत्रिय वैश्य, न ब्राह्मण, लेकिन इनसे भी परे, वर्णाश्रम धर्म से भी परे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ब्राह्मणों से भी परे माने जाते हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये परमहंस बने सब। तो पिता क्षत्रिय, सबसे वरिष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुआ, लेकिन उसके बाद में 9 पुत्र क्या हुए? वो परमहंस हुए। उसके बाद में जो 80 पुत्र हुए वो क्षत्रिय बने। अलग अलग जगह के उनको उन्होंने संभालने के लिए महाराज भरत ने अपने भाइयों को लगा दिया, एक भाई को यहाँ, एक भाई को इस इलाके में, जैसे राज्यपाल बना दिया उनको सब जगह। और बाकी के जो 10 हुए वो ब्राह्मण बने। तो देखिए, पिता क्षत्रिय है, 100 पुत्रों में से 10 ब्राह्मण बने, 81 क्षत्रिय बने और 9 परमहंस बने। तो ऐसा भी हो सकता है और होता भी था, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता था कि जिस वर्ण में पिता है उसी वर्ण में बच्चा भी काम करेगा, वही गुण उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जो महाराज ऋषभदेव की बात है, वो ऐसे ज्यादा नहीं हुआ करता था, कम होता था लेकिन कम। तो उस तरह से हेरेडिटी, मतलब जो वंश में सब चलता था, जो कार्य पिता करता था वही उसी को पुत्र सीख लेता था, उसको आगे बढ़ाता था और उसका पुत्र भी वही सीखता था, और ऐसे वंश में वही कार्य चलते आता था। इसी तरह से सूत मागध जो राजा के सामने या भगवान के सामने आके जो वाद्य बजाते थे, संगीत करते थे, उनकी भी एक परंपरा, वांशिक परंपरा होती थी। जैसे आप में से जो श्री रंगम धाम में गए होंगे, रंगनाथ जी का धाम है तमिलनाडु में, तो वहां आपने देखा होगा कि पीढ़ियों से, कितने सारे पीढ़ियों से, हजारों सालों से ये वांशिक परंपरा चलती आई है कि जो व्यक्ति अमुक प्रकार का वाद्य रंगनाथ जी के प्रसन्नता के लिए बजाता है, आज तक भी वो बजा रहे हैं, हजारों सालों से। देखिए, वो एक अमुक प्रकार का संतूर हो या कोई जो सिता, वो एक वीणा हो, बजाते हैं, तो अपने पुत्र को उन्होंने सिखाया, फिर उनके पुत्र ने उनके पुत्रों को सिखाया, और ऐसे ये परंपरा चलती आई। वही वाद्य कितने हजारों सालों से चलते आए। तो ये वर्णाश्रम धर्म में चलता था, और इसी तरह से अलग अलग प्रकार के लोग होते थे और उनकी सेवा का विभाजन होता था कि आप इस प्रकार का वाद्य बजाओगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, रोज सुबह भगवान को जगाओगे आप वीणा बजा के, आप रोज सुबह भगवान को बजाओगे संगीत करके, गान गा के। तो जिस तरह से भगवान की सेवा के लिए ऐसे अमुक प्रकार के लोग होते थे जिनकी निर्धारित सेवाएं होती थी और वो वांशिक परंपरा में चलती आती थी, उसी तरह से राजा की सेवा के लिए भी लोग होते थे। जैसे भगवान को जगाने के लिए वाद्य बजाने वाले होते थे, राजा को जगाने वाले भी वाद्य बजाने वाले होते थे। आप में से जिन्होंने रामायण पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि दशरथ महाराज को जगाने के लिए या किसी भी राजा को जगाने के लिए हर रोज सुबह सुबह को वहां सारे ये सूत मागध वंदी इत्यादि एकत्र होते थे, और फिर पहले संगीत, मधुर संगीत बजाते थे, मधुर गान होता था, फिर धीरे 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 से राजा जग जाते थे, और फिर जग जाते तो उसके बाद में वंदीगण जो हैं अपनी राजा की स्तुति में वंदना अर्पण करते थे, और फिर सूत गण जो होते थे वो महाराज की प्रशंसा में और कोई ना कोई कविता इत्यादि प्रस्तुत करते थे राजा के सामने, उनका मन थोड़ा प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर किसी का मन प्रसन्न हो तो सारा दिन अच्छा चलता है। सुबह सुबह कोई झगड़ा हो, उठते उठते ही कोई दो उल्टी बातें बोल दे तो सारा जो है दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का। तो इसलिए सुबह सुबह को सत्वगुण का और बहुत प्रसन्नता का एक वातावरण तैयार करने के लिए ये सब योजना होती थी, क्योंकि राजा भी हुआ करते थे जो पूर्व जमाने में बड़े योग्य हुआ करते थे। नरदेव वास्तव में नरदेव हुआ करते थे, वो भगवान का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते थे, राज ऋषि थे, केवल राजा नहीं बल्कि ऋषि भी हुआ करते थे। इसीलिए उनमें ऐसे गुण थे जो वास्तव में इतने प्रशंसनीय थे। और जो भी ये वंदीगण, वंदी मतलब जो वंदना अर्पण करते हैं, सूत मतलब जो गुणगान करते हैं, मागद जो कि संगीत बजाते हैं, ऐसे अलग अलग जातियां होती थी, और जो भी ये बोलते थे वास्तव में सत्य होता था, क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण होते थे। और ऋषि जो राज ऋषि होते थे वो भी उनके अंदर ऐसे दिव्य गुण थे कि वो घमंड नहीं हो जाते थे ये सब सुनकर, उनके सर पे चढ़ नहीं जाता था ये सब। आजकल नेताओं के सामने जो भी कुछ कहते हैं लोग, मस्का मारने के लिए जो भी कुछ बताते हैं उनको, तो उन सर में चढ़ जाता है, सोचते हैं कि वास्तव में मैं ऐसा हूं, मैं इतना महान हूं। लेकिन ऐसे ऋषिगण नहीं सोच रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि महाराज पृथु कह रहे हैं कि आप मेरी ऐसी प्रशंसा न करो। नम्र थे, वास्तव में वैष्णव थे वो, शक्ति अवेश अवतार जीवात्मा, लेकिन फिर भी एक वैष्णव का रूप स्वीकार कर रहे हैं। मेरे अंदर तो ऐसे गुण नहीं है, तो इसलिए मेरी प्रशंसा आप क्यों कर रहे हो? ये प्रशंसा आपको किसी और योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, मैं ऐसे योग्य नहीं हूं। वास्तव में पृथु महाराज का जन्म तो अभी अभी हुआ था, लेकिन ऐसे जन्म नहीं हुआ जैसे हमारा होता है। मैटरनिटी वार्ड में रोते रोते हम आते हैं और फिर हमें पीठ पे मारना पड़ता है रुलाने के लिए, और फिर बड़े दुखी अवस्था में आते हैं और दुखी रहते हैं। लेकिन महाराज पृथु जब प्रकट हुए महाराज वेण के भुजाओं से, तो कैसे आए? एक पूर्ण नव किशोर, नव युवक के रूप में आए, प्रकट हुए। वो भी प्रकट हुए वैसे, और उनकी पत्नी धर्म पत्नी महारानी अर्ची वो भी वैसे प्रकट हुए। देवलोक में भी ऐसे ही जन्म होता है, वहां भी वाह 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 करते हुए बच्चे नहीं आते, वहां भी तरुण अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। एक गुलाब के पत्तों के शैया पर प्रकट होते हैं, वहां पट करके प्रकट हो जाते हैं तरुण अवस्था में, और अंत तक तरुण अवस्था में रहते हैं, वहां बुढ़ापा नहीं होता, वहां आपको सफेद बाल नहीं दिखाई देंगे, वहां चलने के लिए कोई लाठी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। शुरू से अंत तक सब वहां जवान प्रकाशमान दिखते हैं। हां, मृत्यु तो सभी को आना है। आपरम भुवनालोक पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्ति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो भगवान के धाम में ही जाना है बस। चाहे ब्रह्मलोक हो पाताललोक हो, सभी को मरना है, सभी को चिंतित रहना है, सभी को भयभीत रहना है। यहां के देवतागण भी हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाराज पृथु प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूं, मेरी प्रशंसा इतना आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। और महाराज पृथ्वी जब प्रकट हुए तो तुरंत उनका राज्याभिषेक हुआ, इसलिए उनको समय नहीं मिला था कि शक्त्यावेश अवतार के गुण प्रकट करें। अभी तक राज का काम तो संभाला नहीं था, प्रजापालन का कार्य अभी तक संभाला नहीं था, तो लोगों को कैसे पता चला कि ये शक्त्यावेश अवतार है? तो महाराज पृथ्वी बता रहे हैं कि अभी जो आप गुणगान कर रहे हो वो समय के थोड़ा पहले है, अभी तक तो ये गुण प्रकट किए नहीं मैंने। आप बोल रहे हो कि ये प्रजा का पालन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, गुणगान कर रहे हो, लेकिन अभी तो ये ठीक नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति को करो। तो भगवान हमारे लिए उदाहरण दे रहे हैं, एक आदर्श हमारे सामने रख रहे हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज पृथु केवल ऐसा बोल रहे हैं, सोच भी रहे हैं। जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें अमृत के समान लगता है हमारे कानों के लिए, सोचते हैं कि वाह कितनी सुंदर बातें, मीठी बातें कही हैं, ऐसे बातें हमारे कानों में जाते रहें तो बस बात बन जाए, हमें कितना अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे अहंकार को कोई अच्छी तरह से मालिश करे, शरीर को कोई तेल से मालिश करे तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से जो प्रशंसा आती है हमारे कानों के द्वारा, हमारे अहंकार को जाके मालिश करती है, अच्छा कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब हमारी प्रशंसा कोई करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं, वास्तव में इन्हीं ने हमें समझ लिया है, दूसरे लोग जो है वो हमको समझते नहीं है, आज तक हमें समझ नहीं पाए, लेकिन ये व्यक्ति हमको समझ गए हैं। हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। ये गुण तो दूसरे वैष्णवों के हो सकते हैं लेकिन हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं है। अमानी न माने देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी न मतलब अपने आप के लिए कोई मान सम्मान की अपेक्षा न करना और दूसरों को मान सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहना। जिस हद तक अपने आप के लिए हम सम्मान की अपेक्षा नहीं करते उस हद तक हम दूसरों को सम्मान दे पाएंगे। अगर हम अपने लिए कोई एक विशेष स्थान चाहते हैं, विशेष सम्मान चाहते हैं, कोई प्रशंसा चाहते हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अलग सा कुछ हो और लोग मुझे अलग से कुछ ज्यादा कुछ सम्मान दे दूसरों से, उस हद तक हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाएंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए भक्त हमेशा नम्र रहता है और सोचता है कि किस तरह से दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान दें लेकिन अपने आप के लिए सम्मान न चाहें। भक्तों के समाज में भी यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्तों के बीच में भी हम सोचते रहते हैं मैं दूसरों से वरिष्ठ हूं इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए या दूसरों को उतना सम्मान नहीं देंगे। तो इस तरह से ये भावना से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भक्तिलता बीज को गले से पकड़कर उसको उसमें घुटन आ सकती है, बंद कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें नम्रता से रहते हुए अपनी सेवा करते रहना चाहिए। आखिर अगर कोई गलत कार्य हमारे साथ कोई करे भी, चाहे कोई भक्त भी करे, तो आखिर भगवान तो देख ही रहे हैं ना, भगवान तो साक्षी है ही, तो हमें क्यों चिंतित होने की आवश्यकता है। और अगर कोई हमारे साथ गलत कार्य कर भी रहा है, इसका मतलब है कि हमने पहले किसी के साथ गलत कार्य किया था, उसका तो प्रतिकार हमें मिल रहा है, तो हम दूसरे सामने वाले भक्त को क्यों दोषी ठहराएं? वो तो केवल हमारे कर्मों का प्रतिकार देने के लिए, फल देने के लिए एक निमित्त है, भगवान ने उसे निमित्त बनाया है, तो उसे क्यों हम दोषी ठहराएं? उसके प्रति हमारे हृदय में क्यों गलत विचार हो, घृणा होनी चाहिए, द्वेष होना चाहिए, क्यों ऐसे होना चाहिए? सभी के प्रति प्रेम भावना रहनी चाहिए, कम से कम प्रयास तो रहना चाहिए। तो महाराज पृथु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि प्रशंसा कोई करते हैं तो कहना चाहिए नहीं नहीं ये मेरे लिए योग्य नहीं है। वास्तव में जब ऐसा होता है तो हमें अपने दुर्गुणों के बारे में स्मरण करना चाहिए और जो प्रशंसा करने वाला है उसके सद्गुणों के बारे में सोचना चाहिए कि देखो ये इतना अच्छा भक्त है कि मेरे जैसे को भी, मेरी भी प्रशंसा कर रहा है। तो इस तरह से ये भक्ति मार्ग आसान भी है और बहुत कठिन भी है। करने के लिए तो बहुत आसान है लेकिन जब गहराई में सूक्ष्मता से इसकी परीक्षा करेंगे, आगे 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 बढ़ने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि कितना कठिन है ये। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत नम्र बनना चाहिए, नहीं तो आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। वही केवल भक्ति मार्ग में प्रगति कर पाएगा जो अपने आप को दूसरों का सामने सर झुका पाएगा, जो वास्तव में नम्र बन पाएगा, दूसरों की प्रशंसा कर पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब दूसरे देखते थे कि भक्तों में कोई वाद हुआ हो, कोई गैर समझ हुआ होगा दो भक्तों के सामने, तो उनको सामने बुलाकर कहते थे कि ठीक है इस भक्त के जो अच्छे गुण हैं उनको बताओ। तो अच्छा नहीं लगता था उस भक्त को, इसके साथ में झगड़ा किया, अभी इसके अच्छे गुण कैसे बता सकते हैं। शुरू शुरू में ये लगता है कि इसके अंदर कोई अच्छे गुण हो ही नहीं सकते। फिर कहते थे नहीं सोचो, बोलो एक के बाद एक बोलो। तो एक सद्गुण आता था, हाँ वास्तव में इसके जीवन में इतना कष्ट है लेकिन फिर भी ये भक्ति करता है, भगवान का शरण छोड़ा नहीं इसने, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है। दूसरी बात, हाँ सोचो और सोचो, तो ऐसे कराते कराते उनको खींच खींच कर इतना लंबा लिस्ट हो जाता था दूसरे भक्त के सदगुणों का कि बाकी अंत में पहला भक्त सोचने लगता था, अरे इतने सदगुण इसके अंदर है तो मैं दुर्गुण क्यों देख रहे हैं हम, तो हृदय बदल जाता था। तो इस तरह से हमें दो चीजें जो हमें भूलने चाहिए वो ये है कि दूसरों ने हमारे साथ में क्या बुरा किया है और हमने दूसरों के साथ में क्या अच्छा किया है। और दो चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दूसरों ने हमारे साथ क्या अच्छा किया है और हमने दूसरों के साथ क्या बुरा किया है। सही बात है। तो दो चीजें क्या है जो हमेशा हमें भूलने चाहिए? पहली बात, दूसरों ने हमारे साथ में कोई बुरा किया, हो सकता बुरा नहीं हो, हम ही सोच रहे हैं कि बुरा है, लेकिन जो भी हो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में? भूल जाना चाहिए कि इसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा किया, वैसा किया, भूल जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या भूलनी, क्या भूलना चाहिए? हमने दूसरों के साथ में क्या अच्छा किया। हमेशा हम ये कहते हैं देखो ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है लेकिन मैंने इसकी इतनी मदद की, मैंने इतना सब इसके साथ किया है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव है ना। नहीं, हमने जो अच्छा किया किसी का तुरंत भूल जाओ, अगले क्षण ही भूल जाओ कि हमने अच्छा किया था। किसी ने बुरा हमारे साथ किया उसी क्षण भूल जाओ, उसके हृदय उसके प्रति हृदय में द्वेष मत रखो। और दो बात जो याद रखनी चाहिए हमेशा क्या है? पहली बात, दूसरे ने हमारे साथ अच्छा क्या किया उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए कि हाँ इसने हमारी मदद की है, इसने हमारी सहायता की। और दूसरी बात क्या याद रखनी चाहिए? हाँ, हमने दूसरों के साथ क्या बुरा किया है ये क्यों याद रखना चाहिए? ताकि दोबारा ना हो और हम समझें अपने आप को कि हमारे अंदर कितने दुर्गुण हैं कि हम दूसरों के प्रति बुरा करते रहते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, बिल्कुल उल्टा ही होता है ना। जिस चीज को हमें भूलना चाहिए उसको याद रखते हैं, जिसको याद रखना चाहिए उसको भूल जाते हैं। तो खैर, महाराज पृथु के उदाहरण से भी हमें सीखना चाहिए, हमारी प्रशंसा करें तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए दूसरे वैष्णवों की प्रशंसा करना, कृष्ण की प्रशंसा करना, और इस तरह से हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हाँ जी। वही है जो संगीत इत्यादि के कार्य में होते हैं वो थोड़े नीच जाति के, नीच मतलब चांडाल जैसे नहीं लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय से भी नीचे माने जाते हैं, निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। लेकिन आजकल जो फिल्मी सितारे हैं और जो संगीतकार है उनको सबसे ऊंचा माना जाता है। देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। लेकिन जो वास्तव में संगीत वगैरह नाट्य वगैरह के हैं वो थोड़े निम्न श्रेणी के माने जाते थे वर्णाश्रम धर्म में। और कोई प्रश्न? टीका। हाँ, भगवान क्यों भयभीत होते हैं? पहली बात कि कोई हमारा स्थान ले ले, पृथ्वी लोक में बहुत लोग तपस्या कर रहे हैं, इंद्र तो खास करके बहुत भयभीत हो जाते हैं। कि अभी आगे चल के पढ़ेंगे पृथ्वी महाराज की कहानी में कैसे इंद्र भयभीत हो गए, इसलिए वो सस्पेंस हम रखेंगे, बताएंगे नहीं। लेकिन जब कोई पदवी की प्राप्ति की कोई ज्यादा तपस्या करता है तो इंद्र सोचते हैं कि ये मेरे गद्दी को ले लेंगे, ये देवताओं का राजा बन जाएंगे, फिर मैं कहां जाऊंगा, फिर वो भयभीत होते हैं। दूसरी बात भयभीत होते हैं, असुर लोग आएंगे हमारे हमें हरा देंगे, फिर स्वर्ग लोक से हमें भागना होगा, यहां इतने सारे भोग की सुविधाएं हैं फिर हम भोग कैसे करेंगे, नंदन कानन वन में भ्रमण कैसे करेंगे,